ओम शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता सुशील भाई जी। एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। देवभूमि कहलाने वाले हिमाचल प्रदेश से आप ईश्वर के निकले अनमोल रतन हैं। 1995 में आपने वहां पर ज्ञान लिया और 1999 में आप मधुबन पांडव भवन में समर्पित हुए। यहां पर आपकी मुख्य सेवाएं मीडिया, पब्लिक रिलेशन और सोशल विंग की हैं। और हमारा जो स्वपुरुषार्थी ग्रुप चलता है उसको आप हैंडल करते हैं, उसके एक्टिव मेंबर हैं। और लौकिक रीति से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन का 14 वर्षों का अनुभव है। सोनी कंपनी अमृतसर में आपने जॉब की थी। तो वर्तमान में जैसे कहा कि बहुत अच्छे एक्टिव मेंबर हैं, क्लासेस सदा कराते रहते हैं। तो आज भी आज की मुरली से जो बाबा ने कहा था, खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, इसी विषय पर अपने अनुभव आप सबके सामने रखेंगे। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। बेहद के इस मधुबन की बगिया में आप सभी मुस्कुराते हुए फूलों का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। ये मेडिटेशन हॉल ना समझ कर इसको बाबा की गोद समझ के बैठना, जैसे हम भगवान की गोद में बैठे हैं। गीत हम सबने सुना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन खुशी हमारी जो निजी संपत्ति है, जो हमारे मूल संस्कार हैं, जो आदि संस्कार हैं, नेचुरल नेचर है, वो हमारी मिस नहीं होनी चाहिए, गुम नहीं हो जानी चाहिए। हमारे जीवन का सार ही खुशी है। अगर हम भगवान के बने हैं तो किस लिए? खुश होने के लिए, ताकि हमारा हर पल जो है उदासी से मुक्त हो, टेंशन, डिप्रेशन, इन सब चीजों से परे। ये हमारे संस्कार नहीं है, ना ये हमारी चीजें हैं, क्योंकि हम ऊंचे ते ऊंचे दैवी कुल वाली आत्माएं हैं। देवताएं अगर उदास हो तो अच्छा लगेगा? तो देवताओं से भी उत्तम ये ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि स्वयं भगवान हमारा साथी है। अभी भगवान के साथ साथ हम चल रहे हों उंगली पकड़कर, और हम रो रहे हों रास्ते में, इमेजिन कीजिए, तो लोग क्या कहेंगे कि भगवान की उंगली पकड़ने के बाद भी रो रहे हैं, तो अच्छा लगेगा? तो जो खुशियों का सागर है, उसने हमको इतनी अथाह खुशियां दी हैं, उनको संजो के रखना है। लेकिन जीवन में खुशी आएगी कैसे? क्योंकि केवल सुनने सुनाने से नहीं होगा, कुछ प्रैक्टिकल अटेंशन रखना पड़ेगा। बहुत सारी बातों पर अटेंशन रखना पड़ेगा, कई सारी बातें छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन है बहुत सहज, है मुश्किल नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, सबसे पहले तो अपने मन बुद्धि से, डिक्शनरी से मुश्किल शब्द ही निकाल दो। संडे की मुरली में सुना था ना सबने, विदेशों से मुलाकात, व्हाट, व्हाई, हाउ। तो मुश्किल शब्द हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी मुश्किल कहां अनुभव करते हैं हम सभी, कहां मुश्किल शब्द का प्रयोग करते हैं, मेडिटेशन में बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है नहीं है, लेकिन हमारे पुराने संस्कार कुंडली मारकर ऐसे बैठे हैं जो नए शब्दों को अंदर घुसने नहीं देते हैं वो, इसलिए पुरानी शब्दावली जो है उसको चेंज करना है। मन रूपी किताब के ऊपर नए निबंध लिखने हैं, नई पोइम लिखनी है, नए गीत लिखने हैं, लेकिन ये तभी लिख पाएंगे जब हमारा अंदर से जो मन के ऊपर जो पहले के लिखे हुए संस्कार हैं उसको मिटा देंगे, कोरा कागज बन जाएंगे, अर्थात मन बुद्धि को पूरी तरह से समर्पित कर देंगे तो नई चीजें नई बातें हमारी बुद्धि में बैठेंगी, नहीं तो पुरानी स्मृतियां हमें तंग करती रहती हैं। जो कहा जाता है आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है, वास्तव में सही बात है कि संसार में हमारा कोई दूसरा शत्रु नहीं है, हम स्वयं ही स्वयं के शत्रु हैं। किसी को क्या पड़ी है कि अपना टाइम निकाल के हमें तंग करे, अगर करते भी हैं लेकिन वो तंग वाली बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हम तंग होते हैं। स्वीकार इसलिए कर देते हैं क्योंकि मन बुद्धि खाली है, रिक्त स्थान है, जगह है वहां, वो वैक्यूम है, इसलिए वो पुराने संस्कार पहले से हावी होते हैं तो पुरानी स्मृतियां अपने मन बुद्धि में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर बार बार उनको दोहराते रहते हैं तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। बाबा कहते हैं एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, क्या है ये आज की मुरली है जी, खुश खराफत, यह है जबरदस्त खातरी, 22/2/2021 की सेम मुरली है, थोड़ा सा आगे पीछे है बाकी सेम मुरली ही है। तो ब्राह्मण जीवन की जो नेचुरल नेचर है वो खुशी है, तो खुशी के हम देखेंगे कि हमारी खुशी गायब कब कब होती है और जीवन में निरंतर खुश कैसे बने और भगवान के महावाक्य खुशी के संदर्भित कौन से हैं, सच्ची खुशी क्या होती है, अविनाशी खुशी किसे कहते हैं। अविनाशी खुशी अर्थात जो किसी कोई भी साधन के ऊपर आधारित नहीं है, कोई हमको अप्रिशिएट कर रहा है तो हम खुश हो जाएं, वो भी विनाशी खुशी है, कोई हमारी महिमा कर रहा है तो हम खुश हो जाएं, वो भी विनाशी खुशी है। सच्ची अविनाशी खुशी का स्रोत एक ही है, कौन सा हाँ जी, बाबा और मैं, इसे हटके बताओ, बाबा का ज्ञान। हम ऊपर ऊपर से कहते हैं कि बाबा को अपना साथी बना लो, संबंधी बना लो, लेकिन जो हमको संबंधों का अनुभव करना है, रस का अनुभव करना है, जैसे मान लीजिए बाप हमारा शिक्षक है, इस संबंध का अनुभव करना है तो शिक्षक की सारी बातें हमको याद भी होनी चाहिए। अगर ऊपर से हम बोले बाबा मेरा पिता भी है, लेकिन पिता के दायित्व तो क्या होते हैं, पिता के प्रति हमारा क्या फर्ज बनता है, ये बाबा के महावाक्य कौन से हैं, ये हमको याद नहीं है तो वो अनुभव नहीं होगा। इसलिए संसार में जो भी लौकिक रिश्ते नाते हैं उन सबको भी सामने रखना है और अलौकिक रिश्ते नाते भी सामने रखते हुए केवल ट्रांसफर करना है उनको, क्योंकि जिम्मेवारियों से हम भाग नहीं सकते, लौकिक रिश्ते नातों से किनारा नहीं कर सकते, उनको छोड़ के अगर हम गुफा में बैठ भी जाएं मन बुद्धि हमारा फिर भी लौकिक में घुसा रहेगा, क्योंकि सारा परिवर्तन हमें संकल्पों के स्तर पर करना है। स्वयं ही स्वयं के संकल्पों को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करना है, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ का आधार है हमारे संकल्प। जब तक हमारे संकल्पों का संशोधन नहीं हुआ, संकल्पों में प्योरिटी नहीं भरी, उनमें शक्ति नहीं आएगी, सामर्थ्य नहीं आएगा, नवीनता नहीं आएगी, तो आगे बढ़ेंगे कैसे। और आगे बढ़ने के लिए ताकत चाहिए, क्योंकि मार्ग साधारण नहीं है, इस मार्ग पर संसार में चलने वाले साधु संत सन्यासी बाबा कितनी महिमा करते, उनकी भी पवित्र भी रहते हैं, घर बार छोड़ दिया, इतना त्याग तपस्या किया, कितने सारे संसार में संप्रदाय हैं, लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए ताकत चाहिए। और ताकत कहाँ है? बाबा में तो है, लेकिन बाबा के ज्ञान में है। तो बाबा से भी ज्यादा महत्व बाबा के ज्ञान को महत्व देना है, क्योंकि बिना ज्ञान के हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें ताकत नहीं भरती है, सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि को हमने काम ही नहीं दिया। मेडिटेशन में तो बैठे हैं, लेकिन उसमें हमको बिना प्लानिंग के अगर बैठते हैं तो भटकने के बहुत चांसेस रहते हैं। जो भी यहाँ भट्ठी चल रही है, बीच में जो मेडिटेशन का टाइम मिलता है, योग के लिए जो टाइम मिलता है, बिना प्लानिंग योग करेंगे तो इतना परिवर्तन नहीं होगा। जिस मंशा को लेकर हम घर से निकले थे कि हम मधुबन में जाएंगे, अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे, परिवर्तन करेंगे, अपना नए नए अनुभव करेंगे, वो होगा नहीं उतना। वो केवल आएंगे, मधुबन किया, भट्ठी हो गई, इससे परिवर्तन नहीं होगा। कुछ तो अपने आप से कुछ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, कुछ बातों में नवीनता लानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें संकल्पों के ऊपर काम करना है कि कैसे हमारे संकल्पों में शक्ति भर जाए, ताकत भर जाए, एनर्जी भर जाए, संकल्पों में ईश्वरीय बल भर जाए। वो कहां से भरेगा? नए नए संकल्प कहां से मिलेंगे? मुरलियों से मिलेंगे, ज्ञान से मिलेंगे। जितना हम अपने मन बुद्धि को ज्ञान में डुबो के रखेंगे, खुशी निरंतर बढ़ती जाएगी। खुशी का स्रोत है वो, और खुशी का स्रोत है उसे टच करने के लिए हमारी फ्रिक्वेंसी भी वैसी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, अगर उसकी बात को हमको समझना है तो हमारा बुद्धि का लेवल भी वैसा होना चाहिए, नहीं तो हमारी दूरियां बनी रहेंगी, समय पर काम नहीं होगा। इसी तरह से अगर हमें परमात्म शक्ति का अनुभव करना है, परमात्म प्यार का अनुभव करना है, अपनी खुशी को बढ़ाना है, तो हमारी फ्रिक्वेंसी भी वैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए संकल्पों को शक्तिशाली बनाने के पहला अभ्यास है आत्म सम्मान, स्वयं का सम्मान करना सीखना है। कहीं ना कहीं हमने अपने मन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातों को पकड़ के रखा है जिनको हम छोड़ते नहीं है, जबकि हमको पता है उन बातों को याद करने से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी हमने उन बातों को पकड़ के रखा हुआ है। चाहे वो घर में हो सकती है, संबंधों की हो सकती है, बिजनेस की हो सकती है, बीते हुए जीवन की हो सकती है, अर्थात पास्ट की हो सकती है, कोई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि जिनको याद करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमने फिर भी पकड़ के रखा हुआ है। तो संकल्पों को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें नए नए संकल्पों को मन बुद्धि के अंदर भरना है, तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ेगा। आत्मसम्मान अर्थात स्वमान में स्थित रहना। अब स्वमान की हम लंबे समय से क्लासेस सुनते रहते हैं, और बाबा ने भी बहुत सारे स्वमान मूल्यों में दिए हुए हैं, उनका अभ्यास भी करते हैं, लेकिन कुछ एक स्वमान अलग से हटके हमको खुद ही क्रिएट करने पड़ेंगे। तो वो कौन से स्वमान हो सकते हैं? कोई एक नया स्वमान बताइए जो आज तक मुरली में भी नहीं आया हो। बाबा कहते हैं अपनी गोट तो नशा चढ़े, तो हमें खुद अपना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। तो आज की मुरली से कुछ ऐसा स्वमान बताइए। जैसे मैं वरदानी ऊर्जा से समर्थ आत्मा हूं, एक नया स्वमान है। मेरे बोल में वरदानी वाइब्रेशन समाये हुए हैं। स्वयं भाग्य विदाता मेरे भाग्य का निर्माण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुआ है, नए स्वमान क्रिएट करने हैं। उस वरदाता ने मुझ आत्मा में ऐसी क्वालिटी देखी कि मेरे मुख से निकलने वाले वरदानी बोल से इस संसार का कल्याण होने वाला है। तो कुछ एक ज्ञान का जो दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। है तो वही ज्ञान है, सब्जी तो वही खाते हैं हम, लेकिन उसको नए नए तरीके से खाते हैं तो उसका मजा आता है। तो ज्ञान में नवीनता चाहिए, तो स्वमान को नए नए तरीके से, मैं परमात्म शक्तियों का सागर हूं, या मधुबन में आए हैं तो एक नया स्वमान हो सकता है, मैं ही मधुबन हूं। अब जब हमको ये स्मृति रहेगी घर में भी कि मैं मधुबन हूं, तो मन में क्या क्या संकल्प आएंगे? मधुबन जैसे संकल्प आएंगे ना, मधुबन बाला बाबा याद आएगा, मधुबन की मुरली याद आएगी, मधुबन के चारों धाम याद आएंगे। तो जब हम सोचेंगे तो हमारे अंदर वाइब्रेशन कैसे होंगे तैयार, नेगेटिव होंगे, अलौकिक शक्ति भरे सामर्थ्य भरे वाइब्रेशन तैयार होंगे। तो मैं ही मधुबन हूं, और कौन सा नया सम्मान हो सकता है? शांति धाम सुख धाम ही मेरा निवास स्थान है, अर्थात जहां हम रहते हैं उसको शांति धाम बना दो, है ना। घर में चार कमरे या चारों कमरों का नाम चेंज कर दो, सूक्ष्म वतन, मूल वतन और मधुबन। स्थूल वतन तो वैसे याद है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, तो नाम चेंज कर देने हैं। हाँ जी, मेरा वृत्ति ही शांति धाम है। दादी जानकी जी कहा करते थे कि इतने वर्षों से हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो यही मेरा शांति धाम बन गया हुआ है ना। और कोई हमारे संबंध संपर्क में जो आते हैं भाई बहने, तो उनका भी नाम चेंज कर दो, बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे सामने कोई आ रहा तो क्या सोचेंगे, ये गणेश जी आ रहे हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, ये सबके विघ्न विनाश करने वाले हैं। भले वो सबको विघ्न डाल रहा है, लेकिन हमें संकल्पों के स्तर पर काम करना है। ऐसी हमारी एनर्जी उसके पास जब पहुंचेगी तो वो उसकी एटीट्यूड, उसकी वृत्ति, वाइब्रेशन उसको अनुभव होंगे कि सामने वाली कौन सी आत्मा है, विघ्न विनाशक, जो बचपन से मेरे सामने विघ्न बनकर आ रहा है, लेकिन वो विघ्न विनाशक आत्मा है क्योंकि उसको स्मृति नहीं आई है। जैसे हम अपने जीवन को अगर देखें, या कोई घर में होता है, पति पत्नी होते हैं, पति लंबे समय से लड़ाई करता है, पत्नी को ज्ञान में नहीं चलने देता है, लेकिन कुछ सालों के बाद उसको अच्छा लगता है और कोर्स कर लेता है और वो पत्नी से भी आगे निकल जाता है। अब संस्कार तो पहले भी थे ना, जब वो विघ्न डाल रहा था संस्कार तो थे ना, उसमें देवता संस्कार तो थे ना, फरिश्ता संस्कार तो थे ना। आज भी हम देखते हैं जिन्होंने यज्ञ में शुरुआत में इतने विघ्न डाले हैं, जो हापुड़ का हंगामा, पीछे कुछ दिन पहले वो भाई जी आए थे, कहते हमारे सामने वो हंगामा हुआ था और हम उसको आंखों से देखते भी थे, आज वो एकदम समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। इतना मन बुद्धि का समर्पण हो गया, क्योंकि हमारे अनादि संस्कार आदि संस्कार किसी को दुख देने वाले नहीं है। ये तो हम वातावरण के प्रभाव में अपने आप को भूल जाते हैं, अपने स्वधर्म से गिर जाते हैं, अपनी समर्थ स्मृतियों से परे चले जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे संस्कारों से हम पीड़ित होते रहते हैं। तो सामने वाले को क्या देखना है, ये विघ्न विनाशक है, और क्या देखेंगे, ये हनुमान है। हनुमान क्या करता है, दूसरों को संजीवनी बूटी सुंघाता है, भले दिन में सबको तंग कर रहा है वो, लेकिन उसमें भी वो देखना है। और बहने क्या देखेंगी, ये काली दुर्गा है, तो क्या करेगी, सबके दुर्गुणों को हरने वाली है। तो संस्कार सब में, सबके अंदर में है वो, हमें तो दैवी गिराने वाली आत्मा है ना। अब एक मंदिर की मूर्ति है, बोलती नहीं है कुछ भी, लेकिन उसको देख के कैसे खुश हो जाते हैं, हम बोलते हैं कुछ, और हम तो चैतन्य है, हमको पता है कि हम ही देवी देवता हैं, और फिर भी हमारी खुशी गायब हो जाती है। कितने हम शक्तिशाली हो गए, तो हमारी खुशी गायब होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहली बात है अपने आत्म सम्मान को नए तरीके से जागृत करना है, प्रैक्टिकल में उसके ऊपर काम करना है, उसको स्वीकार करना है कि मैं हूं। कहीं ना कहीं हमने सम्मान को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए हमारे में वो परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, अपने आप से ही दूरियां बनी रहती हैं। सारे दिन में हमारे जो व्यक्तित्व हैं सवेरे से लेकर रात्रि तक बदलते रहते हैं। सवेरे उठते समय हम कुछ और होते हैं, भगवान से बातचीत करते हैं अमृत वेले कुछ और होते हैं, बाहर निकलते हैं कुछ और हो जाते हैं, और शाम को होते होते तो कुछ और ही होते हैं। तो हमें स्वयं के ऊपर फोकस करना है कि हमारा जो व्यक्तित्व है, देवताए व्यक्तित्व, देवताए गुण, जैसे आज बाबा ने कहा ना, स्वभाव, किसी किसी का स्वभाव ऐसा है जो सबको सताता है, तो हमारा स्वभाव ऐसा नहीं हो। हमारा स्वभाव कैसा है, मीठा स्वभाव है, दैवी स्वभाव है, सबको सुख देने वाला स्वभाव है, सबका कल्याण करने वाला स्वभाव है, स्वयं के लक्षणों से, स्वयं के चरित्र से, स्वयं के चलन से दूसरों को अनुभव कराने वाला स्वभाव है, परमात्मा के नजदीक ले जाने वाला स्वभाव है। तो अपने आप को चेंज करना है, तो आत्म सम्मान अर्थात सम्मान को नए नए तरीके से जागृत करना है। दूसरी बात है, अगर हमको खुशी निरंतर बनाए रखनी है तो स्वयं के साथ सच्चाई सफाई। एक तो हम कह देते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, वो तो है, सब हम जानते भी हैं, लेकिन क्या मैं स्वयं से सच्चाई से रहता हूं? जो भी श्रीमत हमको मिलती है, अथाह श्रीमत है, हम उसको कितना अप्लाई करते हैं? सारे दिन में बाबा कहते हैं अपने आप को आत्मनिश्चय करो, लेकिन पूरा दिन तो बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, देह दिखाई देती है। बाबा कहते हैं अच्छा चलो देह दिखाई भी देती है तो क्या देखो उसमें? फरिश्ता देखो उसमें। अच्छा फरिश्ता भी नहीं दिखाई देता तो और क्या देखो? देवी देवता दिखाई देखो। और क्या देखो? आत्मा, वो भी नहीं दिखाई दे रही ना, कहां दिखाई दे रही है? और क्या देखो? सबके गुण देखो। अच्छा गुण भी नहीं देखे तो और क्या देखो? अपगुण दिखाई दे रहे तो क्या करो? तो अपगुण भी देखो, इन उसमें ये देखो कि इसके हमको फायदा क्या होने वाला है और इससे ये आत्मा कितनी दुखी है सामने वाले अवगुणों से भी। तो उन अवगुणों को देखकर भी हमारे मन में कौन से विचार चल रहे हैं कि उस आत्मा को उन अवगुणों से मुक्त करने के लिए क्या मैं वो काम कर रहा हूं, मेरा दायित्व तो क्या बनता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सभी दूध से धुल गए एकदम, अवगुण तो भरे हैं, बाहर से तो चमड़ी चमक रही है, अंदर क्या क्या किसी को दिखाई थोड़ा दे रहा है। तो स्वयं के नजदीक तो हम स्वयं ही है ना, कि हमारे अंदर में क्या क्या चल रहा है। तो स्वयं से सच्चाई सफाई रखनी, अर्थात जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं उसको स्वीकार करना है, सच्चाई सफाई से अर्पित करना है। अर्पित करना अर्थात जो बाबा हमको एक हाथ में दे रहा है, आज ही मुरली में था ना, तिरी पर बहिष्ट, हथेली पर बहिष्ट बाबा दे रहा है स्वर्ग की रजाई, लेकिन उससे ही पहले हमको आज बाबा ने कहा ना गॉडली स्टूडेंट इज द बेस्ट लाइफ। तो एक स्टूडेंट को भगवान ने सवेरे सवेरे टीचर बनकर क्या क्या दिया है, जो हमको उसने होमवर्क दिया है, एक हाथ में उसको सामने रखो और दूसरे हाथ में देखो क्या ये मेरे अंदर है, क्या वो धीरे धीरे मेरे कर्मेंद्र में समा रहा है, क्या वो उससे मेरी दृष्टि का शुद्धिकरण हो रहा है, क्या मेरे बोल में कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्या मेरी वृत्ति कुछ चेंज हो रही है। तो अपने आप से बातें करना सीखना है, आज ही मुरली बाबा ने बोला ना, बातों के लिए किसको बोला बाबा ने, किसको याद किया साथ में, कौन बातें करता है? बांदेलियां, बाबा कहते हैं बांदेलियां भी इतना याद करती है, आंसू बहाती हैं कि ओहो बाबा से हम कब मिलेंगे। प्रश्न उत्तर में सेकंड पॉइंट था, क्या पॉइंट था? अपना चार्ट रखो कि हम बाबा से क्या क्या बातें करते हैं। तो बातें करना, मेडिटेशन माना हमारी आपस में बातचीत, अभी हम जो आपस में चर्चा कर रहे हैं ये भी एक मेडिटेशन है, मेरा योग आपसे लगा हुआ है, उसी तरह से बाबा से बातें करनी है। जब हम बैठते हैं तो संकल्प करना है कि हम और भगवान, मैं और बाबा अभी आपस में बैठ के बातें करेंगे, ये नहीं सोचो योग करने जा रहे हैं, क्योंकि योग करते करते बाबा कहते हैं हैवी कर दिया अपने आप को, याद शब्द करो, या बातें करने जा रहे हैं, रूरान करने जा रहे हैं, हम अपने दिल की बात बताएंगे, बाबा अपने दिल की बात बताएगा, एक दो से हम लेन देन करेंगे, वो मुझे अच्छी अच्छी पॉइंट टचिंग कराएगा, और अपने मन बुद्धि जो हम समर्पित कर देंगे तो धीरे धीरे अनुभव होगा कि सचमुच नए नए जो पुरुषार्थ की युक्तियां वो हमको टच होंगी, हमारे संकल्पों का लेवल धीरे धीरे उनका प्योरिटी का लेवल बढ़ता जाएगा। तो भगवान से बातें करना सीखनी है, बाबा ने कहा चार्ट रखो, बांदेलियों को कितना याद किया। तो निरंतर खुशी बनी रहे तो उसके लिए सबसे पहली बात है अपने संकल्पों पर काम करना है, क्योंकि संकल्प कर काम करेंगे तो बाकी हमारा सारा परिवर्तन सहज हो जाएगा, हमारी दृष्टि पर कंट्रोल हो जाएगा, हमारी वृत्ति पर कंट्रोल हो जाएगा, एक आत्मा जो एक अंदर में कॉन्शियस चेतना में रहेगी, भले सब देह दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमारी कर्मेंद्रियां विचलित नहीं होंगी, किसी के देह को देखकर प्रभाव में नहीं आएंगी, हमारी कर्मेंद्रियां कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि ज्ञान में क्या है, शक्ति है, ताकत है, बल है, उस ज्ञान की ताकत से आत्मा में जब बल भरेगा तो संकल्पों में भी ताकत आएगी, बल आएगा, और उस बल का प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। इसलिए साइंटिस्ट लोग भी क्या कहते हैं, अधिकतर बीमारियों कहां से पनपती हैं, हमारे संकल्पों से, अगर हम कमजोर संकल्पों की रचना करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, शक्तिशाली संकल्प होते हैं तो वैसे हमारा चेहरा दिखाई देता है, गुस्से वाला व्यक्ति हो तो कैसे चेहरा दिखाई देगा, पूरा घर में उत्पात मचा देता है, और एक व्यक्ति शांत हो। आज बाबा ने इसके लिए वो क्या बोला, अगर ताली कैसे बजती है तो हमको क्या करना है, एक हाथ से ताली बजानी है, एक हाथ से चुप रहना है, ताली नहीं बजानी है, चुप रहना, लेकिन अंदर अंदर खुशी की तालियां बजती रहेंगी, है ना। तो हमको चुप रहना है, एक चुप सौ सुख। तो हमको ज्ञान को अप्लाई करने की आदत निकालनी है, खुद ही ढूंढना उसमें से, क्योंकि हम अपने स्वयं ही अपने हितैषी हो सकते हैं। भगवान के समय सिवाय हमारा कोई हितैषी नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वार्थ समाया हुआ है, सूक्ष्म रूप से स्वार्थ तो होता ही है। केवल बाबा ही है जो हमारा निस्वार्थ रूप से हमारा हितैषी है। तो आज के प्रश्न में सात बातें थी, कौन कौन सी थी, किसी को याद है सारी की सारी? अगर ऊंच से ऊंच पद पाना है, ऊंच से ऊंच स्टेज बनानी है तो क्या करना है? नष्ट वहां बनने की हिम्मत रखनी है। तो जहां हमारा मोह जाता है ना, वहां भी खुशी गुम हो जाती है, क्योंकि अटैचमेंट है। हम ये भूल जाते हैं कि जिसके साथ हमारा अल्पकाल का रिश्ता है उसके साथ भगवान का भी रिश्ता है। हम उससे अपेक्षाएं रखते हैं, और जब वो अपेक्षाएं इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, फिर उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो हमारा इस संसार में जो भी है, कहते हैं जियो तो ऐसे जियो जैसे सभी अपने हैं, और जियो तो ऐसे जियो अपना कोई भी नहीं है। और वास्तव में बात तो सही है ना, हैं तो सभी अपने हैं। अभी हम यहां बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहां से जाना तो पड़ेगा ही, तो ऐसा नहीं कि रोना है, जाते समय भी अच्छा है, घर में रहे तब भी अच्छा है। इसलिए बोला ना, हर समय अपने आप को इस जैसे मधुबन में स्थिति है ऐसे वहां हमारी स्थिति रहनी चाहिए। और खुशी की चीज है कि हमेशा हमको अपनी प्राप्तियों को याद करना है कि हमारे ऊपर नजर किसकी पड़ी, स्वयं भगवान ने हमारे ऊपर नजर डाली है। अब जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो उसका क्या हाल होगा, बेहाल हो जाएगा, प्राप्ति उसे संपन्न हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। इतनी अथाह प्राप्तियां हैं कि बात मत पूछो। तो कौन कौन सी प्राप्तियां हमको हुई है, सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी है? सुख शांति आनंद प्रेम से भी ऊपर, कि स्वयं भगवान हमारे हाथ में आ गया है, वो मेरे अंग संग चलता है, वो ही मेरा सर्वसंबंधी बन गया है, वो ही मेरे अंजी वो ही मेरे ऑर्डर को मानता है, और अगर हम उसके ऑर्डर को नहीं मानते तो लास्ट में फरमान फतवा जारी करेगा वो। सही बोला, वो भी हमको याद भी रखना है। तो वो सचमुच बाबा ने कहा ना जी हजूर, संडे के मुरली में था ना, वो तो एक सेकंड में दिल से बोलो बाबा और वो हाजिर हो जाएगा, है ना। कल एक बाइक क्लास करा रहे थे तो अच्छी बात बताई, अब पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, बोला बाबा ने कहा अगर सच्चे मन से भी थोड़ी सी सेवा करेंगे ना तो राजा बना दूंगा। तो कह रहा था अगर एक चम्मच भी सच्चे मन से दुलाई करेंगे तो राजा बन जाएंगे। अर्थात दिल से अगर एक बार हम बाबा को बोले तो हमारी मदद करने के लिए बंधा हुआ है, क्योंकि बाबा को दूसरा काम नहीं है, बच्चों को मदद देने के लिए उसका काम है। तो उस मदद का अनुभव करने के लिए हमको थोड़ा उसके तरफ ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। तो हमें हमेशा प्राप्तियों की लिस्ट के सबसे बड़ी प्राप्ति के स्वयं भगवान ही हमारा हो गया है, वो हमारे बिना नहीं रह सकता है। इसलिए बाबा मुरली में क्या कहते हैं कि बाबा को भी बच्चों के बिना सूना सूना लगता है। बताओ भगवान को भी सूना सूना लग रहा है, बेरामी होते, बेचैन हो जाता है, वो टेंशन हो जाती है, बच्चों को ढूंढता है। तो भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी है, तो सबसे पहली प्राप्ति तो भगवान ही हमारा हो गया। और दूसरी प्राप्ति, इतना बड़ा बेहद का परिवार मिल गया है, और बाबा ने कहा है परिवार में पास तो सब में पास। इसलिए परिवार से हमको बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। कभी भी संकल्प नहीं करना कि हम परिवार से थोड़ा किनारे हो जाएं तो शांति मिलेगी, कभी ऐसी शांति नहीं मिलने वाली। शांति मिलेगी परिवार में रह के, और परिवार में तो अपनी परीक्षा भी होती है। संस्कारों का पता परिवार में चलता है, हमारे संस्कारों का संस्कार भी परिवार में रहकर ही होता है, क्योंकि हमें स्वयं से अपना परिचय होता है कि कौन कौन से संस्कार अभी भी मेरे पुरुषार्थ में बाधक है, जो मेरी खुशी को छीन रहे हैं, जो मेरी निजी संपत्ति है, जो मेरी नेचर है, वो क्यों उससे मैं वंचित हो रहा हूं। तो परिवार में रहने से सीखने को मिलता है। तो कितना बड़ा परिवार मिला, और क्या मिला, तीर्थ स्थान मिले, सेवा केंद्र पर। अब सेवा केंद्र एक ऐसी चीज है जहां हमारी उन्नति बहुत फास्ट गति से होती है, लेकिन वहां हमें निरंतर अगर हां जी कहने की आदत हो तो हर बात में हां जी, टीचर बहन से चाहे छोटी टीचर बहन है चाहे बड़ी, हां जी कहने में बहुत एनर्जी भरी है, शक्ति भरी है। और हमने देखा है हां जी कहने से हमारे जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, अपने आप रास्ते खुल जाते हैं। अगर हम थोड़ी सी सेवा में आनाकानी करते हैं, एक तो पहले से स्वयं को असंतुष्टता हो जाएगी कि मैंने मना कर दिया, दूसरा भाग्य को हमने किनारे कर दिया, तीसरा जो बंधन पहले से हैं उनमें और हम लिप्त हो जाएंगे, और चौथा जिसने हमको सेवा दी है उसके मन के प्रति भी थोड़ा सा तो आएगा ना कि ये व्यक्ति, ये बच्चा या ये बाबा का बच्चा मना करता सेवा से, तो उसको थोड़ा फिर सेवा ही कम बताएंगे। हमने खुद देखा है सेवा में हां जी करते तो धीरे 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 एकदम निर्बंधन हो गए। तो सेवा हमको निर्बंधन बनाती है, सेवा एक हमारी खुशी का इजाफा करने का माध्यम है, वो सेवाएं तो खुशी का खान है। ऐसा नहीं हम सोचें कि सेवा करके हम योग करेंगे, सेवा को ही योग का माध्यम बना देना है, योग का मार्ग है वो भी, क्योंकि सेवा करते हम कर रहे हैं, अगर हमको स्मृति रह रही है कि सेवा किसकी है, स्वयं भगवान की, उसने हमारे भाग्य का दरवाजा खोला है, इसके अंदर अथाह कमाई है, हीरे मोती है, बेदाग हीरा बनने के लिए मुझे ये सेवा मिली है, मेरे जो जीवन में के दाग हैं वो सारे मिट जाएंगे इससे, इस सेवा में मेरे अंदर के सारी गुण विशेषता निखर के बाहर आ जाएंगे, मैं सच्चा सोना मान जाऊंगा, आज के मूल्य में था ना सोना और डायमंड। तो हाँ जी बेगन, क्या नहीं आता, नींद नहीं आता, नींद तो आ जाएगी। हाँ, सेवा करेंगे तो हम निंद्रा जीत बन जाएगी, क्योंकि जब हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो स्वतः हमारी बहुत सारी जो सूक्ष्म कमजोरियां वो अपने आप खत्म हो जाती हैं, तो निंद्रा जीत बन जाएंगे वो भी। एक कौन सी पॉइंट थी मुरली में, कितने नंबर की थी प्रश्न उत्तर में, चौथे नंबर की थी, तीसरे की थी, अब आप फाइनल करो कौन सी थी। अच्छा ठीक है, तीसरा निंद्रा जीत बन जाओ, चाहे तीसरा चौथा, ठीक है। तो प्राप्तियों को हमको हमेशा सामने रखना है। अगला है बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, जो भी हमारे से गलतियां हो गई हैं उनको पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, ना ही बाबा कुछ कर सकता है, अब जो हो गया वो तो हो गया है, आज से अभी से हमारा एक नया जीवन है, जो बीत गया सो बीत गया, उस बीती उन बीती हुई बातों से उन असफलताओं से हमने सीख लिया है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। अब जो चीज हमने गुस्सा कर ही लिया, मान लो किसी ने आज ही गुस्सा किया होगा, अब कर दिया तो कर दिया, क्या कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं कुछ, वापस ले सकते हैं नहीं, हो गया तो हो गया। हाँ, उसके साथ साथ हमको माफी मांग लेनी है, सॉरी बोल देना है, बाबा को बोलने से पहले जिसको हमने गुस्सा किया ना उसी से माफी मांग लेनी है, और इसमें बहुत बड़ी बहादुरी चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। और हमने देखा अगर थोड़े छोटे मोटे अगर हम बोल देते हैं किसी को और सच्चे मन से उसको दिल से गले से लगा के सॉरी कर देते हैं तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं, मन बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी, बाबा से साथ कनेक्शन जुड़ जाएगा, नहीं तो वो ही आत्मा बीच में बाधा बनती जाएगी। और ऐसा नहीं है कोई कुछ बोलेगा नहीं हमको, बोलेंगे, क्योंकि हमने भी तो बोला हुआ होगा ना, बिना क्रिया के प्रतिक्रिया थोड़ी होती है। हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा ही क्यों हो रहा है, या सामने वाला मुझे बार बार क्यों टोकता है, दूसरों को तो ठीक चला रहा है, क्योंकि हमने टोका हुआ हम भूल जाते हैं, अनेक रिश्ते नाते हमारे जन्म जन्म के रहे हुए हैं, अब तो हमको ये तो क्लियर करना है ना खाता, हिसाब किताब तो सामने आएगा, इससे हम किनारा नहीं कर सकते, भले किसी भी गुफा में जाके बैठ जाएं, हिसाब किताब तो हमारा वहीं भी आ जाएगा। इसलिए हम बीती बातों का ज्यादा चिंतन नहीं करना है, जो हो गया हो गया है, फुल स्टॉप, नहीं तो बाबा ने इतने हम सबको मेथड क्यों दिए हुए हैं, तो फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज से मेरा नया जीवन हुआ, आज से मैं एक इस धरा पर अवतरित हुआ हूं, किस लिए, सर्व का कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करने के साथ साथ सबका कल्याण करने के लिए, सबको खुशी वाका प्रसाद बांटने के लिए मैं खुशी की खान इस धरा पर अवतरित हुई हूं। कहां से, स्वयं खुशियों के सागर ने मुझे इस धरा पर भेजा है सबको खुश करने के लिए। तो नए नए संकल्पों के साथ रोज अपने आप को अवतरित करना इस धरा पर। एक तो हम सवेरे सवेरे सोचते हैं कि मैं आत्मा इस देह में आई हूं, उसके साथ साथ ये सोचना है मैं आत्मा खजानों को लेकर इस धरा पर आई हूं, खाली नहीं आई हूं। जैसे बाबा क्या है, सागर है ना, तो वो सागर ही उस सागर की सारी संपत्ति को लेकर मैं इस धरा पर अवतरित हुआ हूं। उस सागर के पास क्या क्या है? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, प्रेम का खजाना, पवित्रता का खजाना। तो सारे खजाने लेकर मैं इस धरा पर अवतरित हुआ हूं। जैसे वो संसार की सर्व आत्माओं के प्रति संकल्प करता है, मैं आत्मा भी उसी परमात्मा की संतान हूं, उसी का राइट हैंड हूं। तो मैं वही आत्मा उसका फॉलो फादर करने के लिए अपने कर्मों से, चरित्र से, संकल्पों से, बोल से सबको परमात्मा साक्षात्कार कराने के लिए अवतरित हुई हूं। तो चिंतन शैली को, चिंतन धारा को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि चेंज नहीं होगी, नवीनता नहीं होगी तो जीवन में रस नहीं आता है, फिर हम उसी दर्रे पर चलते रहते हैं। इसलिए नए नए एंगल से मुरली को पढ़ना है। जैसे एक ही इस तरफ से आप देख रहे हैं तो आपको इस तरफ का नहीं दिखाई दे रहा अभी, जब आप चारों तरफ की परिक्रमा लाएंगे तो आपको पता चलेगा पीछे क्या चीज पड़ी हुई है। उसी तरह से मुरली के हर एक पॉइंट को घुमा घुमा के देखना, उसको घुमा घुमा के देखना है। जैसे बोला खुशियों के स्रोत तो ढूंढने हैं, बाबा ने महावाक्य कौन से उचारे हैं, संसार खुशियों के लिए क्या क्या करता है, क्या क्या करता है संसार खुशियों के लिए, लाफिंग क्लब ज्वाइन करता है और क्या करता है, कितने पैसे खर्च करता है और क्या करता है खुशियों के लिए, और क्या करता है, साधनों का इंतजाम करते हैं, पिकनिक जाते हैं, गपशप मारते हैं, तो उसमें कितनी एनर्जी जा रही है। और हमारे पास खुशियों का संसाधन, कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। लोग हमारे पास आए कि खुशी मिलती है तो फलाने गणेश के पास जाओ, फलाने हनुमान के पास जाओ, प्राणी देवी के पास जाओ, उस टीचर बहन के पास जाओ, उसको देख। वैसे भी आप देखेंगे सभी अनुभव करते हैं, कोई कोई ब्राह्मण आत्माओं के सामने जाने से हमारे विचार ही चेंज होते हैं, कमजोरियां खत्म हो जाती हैं, खुशी आ जाती है। और कहीं कहीं ऐसा भी लगता है इसके पास जाने से डर लगता है। तो हमें स्वयं को जांच करना है कि हम कौन से इष्ट देवी इष्ट देवी हैं, है ना? ऐसा नहीं कि बाहर से ही देख के चले जाएगा। और आजकल क्या हुआ है, एक चुटकला ही है, सबने सुना भी होगा, पहले पहले भक्ति कैसी होती थी, अव्यभिचारी व्यक्ति, है ना, कितना विधि पूर्वक से साफ सफाई करके भोग लगाते थे, मंदिर में जाते थे, पूरा परिवार जाता था, सिर ढककर जाते थे और भोग के ऊपर माल रखकर, नारियल वारियल फूल मालाएं सब लेकर, कितना भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते थे। तो पहले थी अव्यभिचारी व्यक्ति, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, व्यभिचारी होगी, तो धीरे धीरे क्या है, देवी देवताओं के लिए जाते तो थे लेकिन फिर धीरे धीरे हम दूसरे काम में इन्वॉल्व हो गए, अपने कार्य में बिजी हो गए। मंदिर में जाते थे फिर भी आरती पाठ पूजा करके वापस लौट आते थे अंदर जाके, फिर धीरे धीरे थोड़ा जाते थे और टाइम कम कर दिया, फिर और टाइम दूसरे कामों में बिजी हो गए। फिर धीरे धीरे हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न होते थे ऐसे, तो एक दिन हनुमान जी बहुत नाराज हो गए। तो विष्णु जी ने पूछा, हनुमान जी क्या हो गया, नाराज क्यों? बोला अब मेरे से सहा नहीं जाता, अब मेरी सहन शक्ति जवाब देगी। बोला बताओ क्या हुआ? बोला कमाल हो गई है, पहले तो मेरी भक्ति पाठ पूजा सब ठीक होती थी, अभी तो सवेरे सवेरे कन्या आई और बाहर से ऐसे कहती है, हनुमान जी प्रणाम तो किया और बोलती है, हनुमान जी मुंह फुला के क्यों खड़े हो आप? बोली हाय हनु, अगले दिन आई बोली हाय हनु, ऐसे हो गया अभी। इसलिए जो रास्ते में मंदिर होते क्या होता है, बात तो ऐसे करते हैं ना, गाड़ी से जा रहे हैं माथा जुगाया निकल जाते हैं। तो ऐसे ना हो कि बाबा से हमने थोड़ी दृष्टि की ठीक है चल दिए, नहीं, जिगर से प्यार करना है, दिल से याद करना उसको। तो हमको हाय हनुमान वाला नहीं बनना है, ठीक है? तो कहां थे हम, कहां खुशी बढ़ेगी हमारी, खुशी गुम होगी। तो प्राप्तियों को हमेशा याद रखना है, हाँ, फॉलो फादर। अगला है फॉरगिव, क्षमा कर दिया। नेक्स्ट है अपनी जिम्मेवारियों के प्रति भी सजग रहना है। हाँ, ये सेवा की बात चल रही थी, क्योंकि सेवाएं हमारी खुशी को बढ़ाती हैं, क्योंकि ये सेवा हमको सारे कल्प में केवल अभी मिलेगी। और सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, स्थूल में तो हम करते हैं अपने संकल्पों से सेवा, जिसको बाबा कहते हैं मनसा सेवा। जब भी हमको सारे दिन में थोड़ा भी टाइम मिले, दो मिनट मिले, बस दो मिनट में सच्चे मन से पूरी आत्माओं को, संसार की आत्माओं को अपने सामने इमर्ज कर लो। जैसे हम इस हॉल में बैठे हैं, मुरली अपना मेडिटेशन बैठते हैं, भट्टी चल रही है, इस हॉल से बाहर निकलो नहीं, यही सोचो कि यही हॉल अभी पूरा परम धाम है और सारे संसार की आत्माओं का हमने आह्वान किया और सारे संसार की आत्माओं जैसे फील करना है इन दरवाजों से अंदर आ रही हैं और हमारे सामने हैं और जैसे हमारे ऊपर परमात्म शक्ति छाया है, स्वयं शिव बाबा मेरे सिर पर है और मुझ आत्मा के माध्यम से उन आत्माओं को जो भी शुभ कामनाएं हैं उन आत्माओं को तृप्त कर रहा है, शांति से, शक्ति से, प्योरिटी से, प्रेम से, खुशी से भरपूर कर रहा है। ये सबसे बड़ी सेवा है अपने संकल्पों पर, अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए, और इसका खुद ही हमको प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरों की भले हम क्लासेस सुनते हैं, इतना परिवर्तन नहीं होगा। अब ये इधर तो सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, जैसे बाहर जाएंगे सब भूल जाएगा ये, क्योंकि आदत पड़ी है हम सबको। तो बाहर जाके हमको, और असली पुरुषार्थ वही है, भट्टी कहाँ चालू होगी आपकी? जब आप मधुवन से बाहर जाएंगे तब भट्टी चालू होगी। भट्टी में तो ठीक है, लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र जाते हैं परीक्षा तो तब आती है, शांति की जरूरत तो तब पड़ती है। घर से बाहर आ गए, किनारे हो गए, अब तो शांति अच्छी लग रही है, लेकिन शांति की जरूरत जब सामने वाला को दो मीठे बोल बोल देता है तब पता पड़ता है, उस समय शांति की जरूरत पड़ती है, तब योग का प्रयोग करना है। और वे लंबे समय से आदत होगी तो होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अटेंशन रखते रखते एक मिनट दो मिनट, इसलिए बाबा ने कई बार कहा मुरलियों में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर एक मिनट दो मिनट तीन मिनट करते करते हमारी नेचर हो जाएगी, आदत पड़ जाए, और यही आदत हमें अंत में हमें पास विद ऑनर बनाएगी। अगर हमने ये आदत नहीं डाली तो हम अंत में धोखा खा लेंगे, फिर पछताना पड़ेगा कि इतने लंबे समय से जो हम कर सकते थे और जो हमने नहीं किया, तो फिर सबसे ज्यादा आंसू कौन बहाएगा? हम ब्राह्मण बच्चे बहाएंगे। सबसे ज्यादा दुख फिर हमको होगा कि स्वयं भगवान हमें अपना सारा समर्पण कर रहा है, अपना वो सहारा बन के आया है, अपना सारा कुछ खजाना देने के लिए आया है, और उस खजाने को हमने किनारे रख दिया है। तो मुरली में अथाह पॉइंट थे, मुरली अर्थात एक खुशी का सागर है, वो उसमें अपने आप को डुबो देना है। तो डेली मुरली के अच्छे अच्छे पॉइंट जितने भी 10-15 शब्द याद रखो, बोले उन शब्दों के इर्द गिर्द घूमते रहो। जैसे आज बाबा ने शरीर के बारे में क्या कहा, इस शरीर की संभाल करनी है ये, लेकिन भूल भी जाना इसको, अर्थात इसे इतना चिपक नहीं जाना कि बार बार हम पूरा दिन इसी को याद करते रहे, इसी को सजाते संवारते मिले, इसी को खिलाते पिलाते रहे, संभाल करनी है। तो इस शरीर के प्रति क्या सोचेंगे, ये देवता ही शरीर है, ये देवता ही आंखें हैं, देवता ही नजरें हैं, देवता ही मुख है ये, तो कैसे कैसे हमारे विचार बदल जाएंगे, देवता ही दृष्टि कैसी होगी, मुस्कुराती हुई, फिर आंसू निकलेंगे। कोई ऐसी है देवी जो रोती है? कोई ऐसा है देवता जो रोता है? लेकिन महाभारत रामायण में तो दिखाते ही हैं थोड़ा थोड़ा, तो वास्तव में वो प्रैक्टिकल अभी का गायन है। हम ब्राह्मण बच्चे कभी कहीं ना कहीं अपनी सीट छोड़कर कहीं ना कहीं दुख भी होते रहते हैं, तो ये हमारे संस्कार नहीं है। तो अपने को मुरली के बीच में डुबो देना है, उसमें बहुत सारे क्लू हैं। अच्छा, महावीर किसे कहा जाता है? जो हर परिस्थिति में अचल अडोल रहे वो भी महावीर है। और आज क्या कहा? बाबा के डायरेक्शन पर चले वो महावीर है। आज की बुले में क्या कहा? जो डैश पुरुषार्थ करते हैं वो महावीर हैं। क्या? जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो महावीर हैं। तो धीरे धीरे एक भी शब्द पकड़ लो, फिर उसके साथ में देखना है अच्छा पुरुषार्थ क्या होता है। अच्छा पुरुषार्थ अर्थात अमृत बिल्ले से लेकर रात्रि तक जो भी एक सामान्य दिनचर्या है। ऐसा नहीं कि तीव्र पुरुषार्थ हमको तीव्र करना है और थोड़े से पुरुषार्थ से भी चले जाए। अमृत वेले से रात्रि तक जो सामान्य दिनचर्या है उस दिनचर्या पर हम कितना तक चलते जा रहे हैं, और जहां नहीं चल रहे हैं तो वहां अपने को चलाना है, वहां अपने आप को रोक देना है कि यहां मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूं। अपनी क्षमता बाबा कहते 200 नाखूनों का जोर लगा दो, 200 नाखूनों का जोर लगा दो तो भगवान का भी दिल पसीज जाएगा कि बच्चा लगा हुआ और मैं क्या करूं, मदद करने के लिए नहीं जा रहा हूं, अपने आप दौड़ा चला जाएगा वो मदद करने के लिए बंधा हुआ है। तो भगवान के महावाक्य ही भगवान है, खाली बाबा को याद करना नहीं, बाबा के साथ उसके ज्ञान को भी याद करना है। अभी आप आए हैं यहां, आप मेरे से बात करने के लिए आए हैं और मैं खाली आपको देख ही रहा हूं और आपसे बात नहीं कर रहा हूं, तो आप क्या सोचेंगे? तो यहां बैठ के केवल बाबा को देखना नहीं है, बातें करनी है। चित्रों को बाबा कहते देखते रहो, अर्थात क्या बुद्धि में चक्कर चलता रहे, ओहो मैं यही देवता था, इतने सुंदर कपड़े पहने हुए थे, इतने श्रृंगार में सजा हुआ था, कहां चला गया वो मेरा श्रृंगार, और स्वयं भगवान मुझको श्रृंगार रहा है, उससे बड़ा श्रृंगार ज्ञान का श्रृंगार है। तो सारे दिन में अपने आप को श्रृंगार से सजे सजाए रखना है, तो बातचीत करना सीखना है। तो मुरली हमारे खुशी को बढ़ाने का एक शक्तिशाली साधन है। जितने भी भाई बहने क्लासें कराते कहां से, उन्होंने अपनी इतनी ऊंची स्थितियां बनाई हैं, या दादियों की हम स्थिति देखते थे कहां से, मुरली से। तो मुरली से प्यार करना सीखना है। बाबा कहते हैं मुरली ऐसी लाठी है जो कहां पहुंचा देगी, जो तुमको स्वर्ग की गेट पर पहुंचा देगी। तो मुरली से प्यार करना सीखना है। मुरली में हर चीज समाई हुई है। और खुशी के लिए क्या करेंगे, खुशी कहां मिलेगी, हां जी, मुरली से प्यार, बाबा से प्यार। जो बाबा कहते हैं मुरली दर से प्यार, प्यार तब होगा जब मुरली से प्यार है। मन मना एक टैबलेट है, आज की मुरली में भी था ना, डांस करना है, खुशी का मंत्र है ये मन मना भव। तो हमें देखना है कि कहां ना कहीं हमारी खुशी का आवना। दूसरा है अपनी कामनाओं पर कंट्रोल करना है। बहुत सारी अनावश्यक हमारी इच्छाएं होती हैं। आजकल डिजिटल वर्ल्ड बहुत हमें हमारी साधना को प्रभावित करता है। कल का वरदान था, क्या वरदान था, साधना और साधना का बैलेंस रखो, ब्लेसिंग के अधिकारी बनो। तो कहीं ना कहीं ये रावण की माया की अंतिम चाल है डिजिटल वर्ल्ड। तो हमें इस पर समय देना है, लेकिन टू मच नहीं समय अनुभव लेना। उसमें हमको देखना है कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए वरदान है और कौन सी अभिशाप है। सारा दिन कहीं ना कहीं अपने आप को श्रापित करते रहते हैं, छोटी छोटी सी अवज्ञाएं करके, जहां हमको टाइम बिताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी टाइम बिता रहे हैं उसमें। हमें पता उससे हमको फायदा नहीं हो रहा है फिर भी चले जा रहे हैं, क्योंकि आदत पड़ी है, हमने अभी अपनी आदत को बदला नहीं है। आज भी बाबा ने कहा ना, टेप डालनी है, आदत पक्की करनी है। कौन सी, भाई भाई की आदत। तो हमको वो आदत पक्की ना होकर दूसरी आदत पड़ जाती है। तो डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा किनारा करना है, नहीं तो हमारी खुशी को चुराता है वो। संडे की मूल्य में था ना, जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। ऐसा संसार में किसी में ताकत नहीं जो तुम्हारी खुशी को चुरा के ले जाए। क्यों ताकत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, फिर भी हमारी खुशी गायब। कमाल है, तो हमारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। साथ में अगर खुशी का अनुभव करना है तो बाबा की समान स्थिति, और वो है अशरीरी बनने का अभ्यास, और ये अभ्यास हमको अंत तक काम आएगा। एक सेकंड में लंबा टारगेट नहीं रखना है कि अभी मैं आधा घंटा शरीर में बैठ जाऊंगा। हाँ धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन हम कर्म करते हुए एक एक सेकंड में बॉडी से डिटैच, केवल संकल्प करना है कि मैं आत्मा शरीर से निकली, बाबा के साथ टच हुई, एक सेकंड में वापस, फिर अगले सेकंड निकली, ये दुराते रहो अंदर अंदर ही, और फिर वापस शरीर में। ये नहीं कि मैं ऊपर गई और बाबा के साथ टच हो गई एकदम, वो संकल्प खींचेंगे, क्योंकि बहुत सारे संकल्प नीचे बैठे हुए जिनको हम छोड़ के गए, वो खींचेंगे फटाफट, तुरंत वापस आ जाना, फिर उनको उन जो संकल्प हमारे दूसरे हैं उनको खत्म किया, फिर सेकंड में ऊपर। अपने आसपास का वाइब्रेशन, वातावरण, वायुमंडल चेंज हो जाएगा। और हां जी, कछुआ की तरह, बाबा ने कल कहा ना कछुए के वो कितनी अकल है, खा पी के कर्मदिन समेट के बैठ जाता है, और तुम बच्चों को इतनी भी अकल नहीं है। जानवर से भी बाबा कितने सिखाते हैं, कितने जानवर से सीखने की बात मिलती है। और वास्तव में हमारी मेंटेलिटी हर आत्मा से सीखने की होनी चाहिए, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे कोई ज्ञान में नहीं है, कोई भी है, बीके नॉन बीके, हर एक से सीखना है। जिज्ञासा वृत्ति बनी रहनी चाहिए, तभी तो गोल्डी स्टूडेंट लाइफ का मजा आएगा। स्टूडेंट का अर्थ ही क्या है, सीखने वाले, सिखाने वाले नहीं। हमको ये कभी नहीं सोचना कि मैं सब कुछ सीख गया हूं। जैसे हम सोचेंगे हमको सारा ज्ञान का पता है, मुरली वही चलती है, योग लगाना है, हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। एक छोटा बच्चा स्कूल में कैसे पढ़ता है, उसी तरह पढ़ना है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अपने होमवर्क का पूरा पूरा ध्यान रहता है, कभी टाइम वेस्ट नहीं करता है। और अभी तो हमारे एग्जाम भी सिर पर खड़े हैं। बाबा ने कहा ना, स्वयं और समय का भरोसा नहीं है। आने वाली संडे की मुरली, कभी भी अचानक कुछ भी रहता है। आज भी हम कभी देखते हैं ना कहीं देखते हैं फलाना अभी जा रहा था और अभी भी नहीं है। तो ये जीवन बहुत वैल्यूएबल जीवन है, अनमोल जीवन है। इस जीवन को हमको ऐसे हल्के में नहीं लेना है, स्वयं अपने आप को प्राप्तियों से भरपूर रखना है। ऐसी हमारी खुशी नस नस में समा जाए। बाबा ने कहा खुशी इतनी होनी चाहिए जो तुम्हारी नस फट जाए। किसकी, कौन सी नस फट जाए, फिर तुम्हारी खुशी इतनी होनी चाहिए जो पांव के नाखून से सिर की चोटी तक खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, लेकिन रोमांच ही ठंडे हुए हैं। तुम्हारा खून खोल जाना चाहिए, इतनी खुशी हमारा निरंतर हो जानी चाहिए। घड़ी जल्दी होगी ये तो खुशी की बातों में टाइम भी ऐसे पास हो जाता है। तो अच्छा लग रहा है, तो अच्छी बात है, ये अच्छा भी बीत जाएगा इसको भी पकड़ के नहीं रखना है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ये हमारा जीवन ब्राह्मण जीवन केवल एक ही जन्म में सारे कल्प में जो हम खुशी का अनुभव करेंगे। देवता ही खुशी का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वो है ही नहीं है कि हम देवता हैं। देवताओं को पता होगा मैं देवता हूं? नहीं, ये तो अभी हमको पता है। तो देवताओं से उत्तम हमारा जीवन है, ठीक है। हाँ, सत्युग में सुख का अनुभव, मानो अगर सुख का अनुभव है तो फिर दुख भी होगा, बिल्कुल सभी सुखी होंगे। तो इस समय का सुख हमारा चोटी का सुख होना चाहिए, इस समय की खुशी हमारी निरंतर सागर बहते रहना चाहिए, वो गंगा की पानी की तरह बहते रहनी चाहिए खुशी। तो हमारे जीवन से, हमारे चरित्र से, हमारे संकल्पों से, बोल से, वृत्ति दृष्टि कृति से निरंतर खुशी की झलक रहती रहनी चाहिए। और इसके लिए नए नए संकल्प क्रिएट करने हैं। तो यहां से जाएंगे तो नए संकल्पों की लिस्ट बना, 101 संकल्प नए क्रिएट करो अपने। थोड़ा मुरलियों से हटके, शब्द भले हुई हूं, लेकिन नए नए सुमान क्रिएट करने हैं। ओम शांति।
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
अजमा में कामयाबी तू झुकाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुशियों के गीत सदा खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा।
डगर पे जो होके निडर चलते हैं, होके निडर चलते हैं,
सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं, हाँ वो काम करते हैं,
नित्य नया वो इतिहास रचते हैं, मर के
के अमर है वो कभी नहीं मरते हैं,
नाम सितारों में अपना लिखाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा।
सभी ने बहुत अच्छा अनुभव किया, लगा कि बस चलता ही रहे, परंतु हर चीज सीमा के अंदर अच्छी लगती है। एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।